44वें एपिसोड में आप सभी गीता प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में परमात्मा यह कहते हैं कि वह आत्मा जो पूजनीय होने के प्रभाव से परे है, जो महान योगी है, तपस्या से जिसने अपने जीवन में तेज भरा है, वही आत्मा सही मायने में देवी संपदा में जाने के योग्य है। तो इसे हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, आइए देखते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन के लिए उसके चरित्र को महान बनाने के लिए, उसके जीवन को समस्याओं से मुक्त करने के लिए अनेक उत्तम बातों की चर्चा की गई है। भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है, भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं। एक कहावत है इसके लिए, मानुष को देवता किए करत न लागी वार। ये भगवान का दिव्य कर्म है कि जब वो इस संसार में आता है तो मनुष्य को देवता बना देता है। हम पहले भी चर्चा कर आए हैं कि एक समय था हम सभी मनुष्य देवता थे। कोई ये ना सोचे डार्विन के विकासवाद के अनुसार कि हम बंदर थे। बंदर थे नहीं, बंदर तो अब बन गए हैं। हम देवता थे, देवत्व था हमारे अंदर। हम अपने देवत्व को भूल गए हैं, पुनः हम अपने देवत्व को पहचान कर उस अनुसार अपने जीवन में आचरण करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक पुनः देवी संपदा के कुछ लक्षणों की चर्चा कर रहा है। कुछ बहुत सुंदर बातें पुनः हम सब के लिए प्रस्तुत हैं। जो देवी संपदा से युक्त व्यक्ति है उसमें तेज, क्षमा, धैर्य और शुद्धि होती है। उसमें किसी के लिए भी शत्रु भाव नहीं होता। और छठी बात कही है जो केवल योगियों के लिए है कि उसमें पूज्यता के भाव का अभाव होता है। क्योंकि जब मनुष्य महान बन जाता है, जब वो गुरु बन जाता है, जब वो एक सिद्ध पुरुष बन जाता है, तब कभी कभी उसके चित्त में ये भाव आ सकता है कि मैं पूज्य हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन दैवी संपदा वाले व्यक्ति का चित्त इस बात से भी मुक्त रहता है। उसके जीवन में तेज रहता है। क्या है ये तेज? मेडिकल साइंस ने एक चीज की तो चर्चा की है कि जो हम भोजन खाते हैं उससे कैसे भिन्न भिन्न चीजें शरीर के अंदर तैयार होती हैं, रस बनते हैं, वीर्य बनता है, ओज बनता है। लेकिन तेज केवल योगियों के चेहरों पर ही होता है। तेज केवल उनके चेहरों पर होता है जिनके विचार तेजस्वी हैं। तेज केवल उनके चेहरों पर होता है जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, जो विकारों में डूबे हुए हैं, जो विकारों को ही आनंद समझते हैं, उनके मस्तक का तेज लुप्त हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में नूर भी कहते हैं। आज यदि आप बाजार में निकल जाओ, हजारों लोगों के चेहरे देखो, तो आप कहेंगे कि किसी के चेहरे पर भी नूर नहीं है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तेज नहीं है। किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है, किसी के चेहरे से निराशा झलक रही है, कोई उदास दिखाई दे रहा है, कोई बहुत तनाव में जीवन जी रहा है, किसी को क्रोध आ रहा है, कोई काम की उलझन में उठा पटक में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, किसी को संबंधों की कड़वाहट का जहर पीना पड़ रहा है, किसी के चेहरों पर भी तेज तो नहीं रहा? वास्तव में ये तेज पवित्रता के द्वारा प्राप्त होता है, ये तेज अतींद्रिय सुख के द्वारा प्राप्त होता है। ये योगियों के चेहरों पर देखा जा सकता है, ये उन महान विभूतियों के चेहरों पर देखा जा सकता है जो बहुत पुण्य आत्मा है, जो पाप से सदा सदा के लिए मुक्त हो गई हैं, जिनके चित्त में किसी के लिए भी उल्टा भाव, ईर्ष्या, द्वेष का भाव, नफरत का भाव नहीं रहता है। तेज के साथ क्षमा। क्षमा बलवानों का श्रृंगार है, ये कहावत है। क्षमा वही कर सकता है जो बहुत शक्तिशाली है, जो कमजोर है वो तो क्षमा मांगता है। इंग्लिश में एक कहावत है, फॉरगिवनेस इज द नोबिलेस्ट रिवेंज। किसी से हम बदला लेना चाहते हैं तो उसका सबसे नोबिल तरीका है, सौम्य तरीका है कि हम उसे क्षमा कर दें। क्षमा कर देने से वो व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज कर सकता है, महसूस कर सकता है, स्वीकार कर सकता है और उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन बदला लेने से, सजा भोगने से परिणाम कुछ और होते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, कहाँ क्षमा करना चाहिए और कहाँ मनुष्य को उसकी सजा देनी चाहिए। आज बहुत लोग क्राइम कर रहे हैं, यदि सबको क्षमा करते रहें तो क्राइम बढ़ जाएगा। कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो गलती करते रहते हैं, उन्हें आप क्षमा करते चलो, वो कभी अपनी गलती को स्वीकार महसूस नहीं करते हैं, उनकी गलती बढ़ती जाती है। ऐसे में क्षमा का महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में हमें दूसरा स्वरूप अपनाना होता है उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए। तो हमें क्षमाशील तो होना चाहिए, घरों में या ऑफिस में, धंधों में छोटी-छोटी बातें होती हैं, उसको हम इग्नोर करें, उसको हम क्षमा कर दें। कोई नौकर आपके पास काम कर रहा है, उसने कोई छोटी मोटी गलती कर दी, उसको सिखा कर समझा कर माफ कर दें, आगे बढ़ें। लेकिन हर जगह तो क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए मनुष्य को स्वयं ही पहचान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि उसे कहाँ क्षमाशील बनना है और कहाँ उसे दूसरा स्वरूप अपनाना है। इतिहास हमें ये बात बहुत अच्छी तरह सिखाता है और दिखाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बार बार क्षमा किया, परिणाम हमारे सामने है। गुजरात के भी एक राजा थे राजवल्लभ, बहुत शक्तिशाली, उसने भी एक पड़ोसी राजा को अनेक बार माफ किया, उसका परिणाम उसको मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। तो हर जगह हमें क्षमाशील नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है तो हमें समय लेना चाहिए, क्षमा करना माना उसकी गलतियों को बढ़ाना है। उसे सुधारने के लिए हमें जरूर कोई सख्त कदम उठाना ही चाहिए। तीसरी बहुत सुंदर धारणा वर्णित है, धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को रॉयल बना देता है, हमारी पर्सनालिटी को बहुत प्रभावशाली बना देता है। जो लोग हर काम जल्दीबाजी में करते हैं, जो लोग हर निर्णय उतावलेपन से लेते हैं, जो मनुष्य अपने बोल उतावलेपन से बोलता है, उसे नुकसान भी होता है, उसे पश्चाताप भी करना पड़ता है। कोई भी काम घर में ही आप कर रहे हैं, मान लो आप भोजन बना रहे हैं, उतावलेपन से करेंगे, देर लगेगी, कई गलती होंगी, कई नुकसान हो जाएंगे। धैर्य पूर्वक कार्य करना, इसका अर्थ ये नहीं कि ढीले ढाले काम करना, आलस पूर्वक काम करना। धैर्य का अर्थ है संकल्पों को शांत रखते हुए कार्य करना, मन को बहुत तेज न दौड़ाना। हाथ से भले या फास्ट काम करें, लेकिन यदि मन को शांत रखेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव आपको जीवन में होंगे। ज्यादा काम कम समय में हो जाएगा, काम में कोई उलझन नहीं आएगी, काम कहीं बिगड़ेगा नहीं और सफल होगा। इस उतावलेपन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। बहुत समय पहले भारवी नाम के कोई संस्कृत के विद्वान हुए, वो परदेश जा रहे थे कुछ काम से धन कमाने के लिए। अपनी पत्नी को एक श्लोक लिख कर दे गए कि जब तुम्हें जरूरत पड़े इसको बेच देना 1000 रुपए में। श्लोक केवल छोटा सा था कि कोई भी काम उतावलेपन से न करो, उतावलेपन से किए गए काम के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। अब उसके पास सब पैसे खत्म हो गए तो वो उस श्लोक को लेकर बाजार में चली गई। वहाँ बाजार लगता था राजा की तरफ से, 1000 कीमत कौन देता उसे। उस समय किसी ने नहीं खरीदा, नियम था कि जो माल बचेगा उसको राजा खरीदेगा। राजा आया, सबकी चीजें देखी, कर्मचारियों ने दिखाया कि ये एक श्लोक लेकर कोई नारी बैठी है, 1000 कीमत मांगती है। उसने पढ़ा, कहा इसको भी ले लो। उसने उसकी कई कॉपी कराकर लिखवा कर जहां तहां अपने महल में उसको लगवा दिया। उसका भाई उससे बहुत दुश्मनी रखता था, वो राज को छीनना चाहता था। उसने सबसे पहले नाई को अपनी ओर मिलाया और कहा बाल काटते हुए उसकी नस उस तरह से काट देना, इतना पैसा मिलेगा। नाई को लोभ आ गया, वो हजामत बना रहा था, सामने वो श्लोक लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, पढ़ते उसको चिंतन होने लगा कि यदि मैं राजा को मार देता हूं तो कल मेरा क्या होगा, परिवार सहित फांसी लग जाएगी, पता नहीं उसका भाई मुझ पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, क्या हो जाए। उसके हाथ से उस तरह गिर गया। राजा ने कहा क्या हो गया, बेचारे ने डर कर सारी बात बता दी। राजा ने उसे धन्यवाद दिया। भाई ने जब देखा ये असफल हो गई स्कीम तो उसने वैद्य को अपने में मिलाया। राजा बीमार हुआ, वैद्य को कहा जहर मिला दो दवाई में, राजा मर जाएगा। उसने जहर मिला दिया, प्याला वो दे ही रहा था, सामने फिर से श्लोक लिखा हुआ उसने पढ़ा, प्याला उसके हाथ से गिर गया। क्योंकि वो भी सोचने लगा आज मैं राजन को मार दूं कल मेरा और परिवार का क्या होगा, हो ना हो हमें सबको नष्ट कर दिया जाए। राजन ने पूछा क्या हुआ, उसने भी बताई। इससे राजा सावधान हो गया, भाई को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया और उसने उसको बुलवाया कि ये किसने बेचा था, उसके पति को बुलवाया और उसको अपना मंत्री नियुक्त किया। तो देखिए हमें सीख लेना चाहिए, धैर्य पूर्वक हम अपने कार्य करें, धैर्यता से ही चलें, धैर्य पूर्वक ही बोलें, समस्याएं आ जाएं तो भी हम अपने चित्त की धैर्यता को खोएं नहीं। बहुत बड़ा गुण हमारे साथ ये काम करेगा। चौथी धारणा बताई है शुद्धि। हमारे वस्त्र अच्छे हों, हमने स्नान किया हो, हमारा मन कितना फ्रेश रहता है। एक साफ सुथरे शरीर में मन अच्छे विचार उत्पन्न करता है। शरीर मैला हो, नहाए न हो, मैले वस्त्र पहने हो, मन भी मैला हो जाता है। इसलिए हमें शुद्धि अवश्य अपनानी होनी चाहिए। विशेष करके सोच जाने के बाद वस्त्र बदल देने चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। हमें मालूम रहे जब हम लैट्रिन में बैठते हैं तो अनेक गंदे जीवाणु लाखों करोड़ों हमारे शरीर पर हमारे वस्त्रों पर चिपक जाते हैं। यदि हम उन्हें ही पहनकर भोजनालय में जाएंगे, भोजन खाएंगे, भोजन बनाएंगे या अपने काम पर जाएंगे तो वो आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं। वो गंदे कहीं विषयुक्त जीवाणु जो हमारे शरीर पर कपड़ों पर लिप्त हो जाते हैं। इसलिए हम बाह्य शुद्धि का भी बहुत ध्यान दें, खान पान की शुद्धि पर भी हम बहुत ध्यान दें, क्योंकि अन्न हमारे मन को प्रभावित करता है। पांचवी धारणा बताई है दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति का किसी के लिए भी शत्रु भाव नहीं होगा। बहुत बड़ी चीज है, संसार में अनेक लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, हमारा बुरा करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा अपमान करते हैं या बिजनेस धंधों में अनेक तरह का लॉस करा देते हैं, धन दबा लेते हैं, माल लेकर पैसा नहीं देते। हमारे मन में उनके लिए बड़े स्वाभाविक रूप से शत्रु भाव उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन इस शत्रु भाव से नुकसान तो हमें ही होता है। हम अपने विचारों को महान बनाएं। ठीक है कारोबार में हमें उनसे पैसा लेना है, उसका हम तरीका अपनाएं, लेकिन हम अपने चित्त को शांत अवश्य करें। और इसके लिए यही तरीका है कि हम सदा सोचें सभी आत्माएं हैं, सब शांत स्वरूप हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सभी एक ही घर के वासी हैं, हम सभी आत्माएं इस संसार रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं, सभी हमारे ही हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई बहने हैं। ऐसे विचार के द्वारा हम अपने चित्त को निर्मल किया करें ताकि मन में किसी के लिए भी वैर भाव उत्पन्न न हो। हमें याद रखना है जिस मनुष्य के मन में किसी के लिए भी वैर भाव नहीं होता, उसका भी संसार में कोई शत्रु नहीं होगा। उसके सभी शत्रु मित्र में बदल जाएंगे, मित्रवत हो जाएंगे। तो हम अपने चित्त से सभी के लिए शत्रु भाव यदि किसी के लिए आ गया हो, उससे स्वयं को मुक्त करें, प्रेम भाव बढ़ाएं। हम प्रेम के सागर भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है सभी मनुष्य आत्माओं को प्रेम देना। छठी बहुत सुंदर जो दैवी संपदा युक्त व्यक्ति की बात कही है कि उसमें पूज्यता का अभाव होगा। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा बनता है, गुरुओं को ही आप ले लीजिए, जैसे जैसे उनके शिष्य बढ़ते हैं, आश्रम बढ़ते हैं, उनका नाम बढ़ता है, उस मनुष्य में सूक्ष्म अभिमान आ ही जाता है। चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, उसमें भी सूक्ष्म अभिमान आना संभव है। हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने को इस अभिमान की माया से बचा देना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति चला घर छोड़ संन्यास लिया, शास्त्र पढ़े, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, साधक हो गया, उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई, या उसे अपने ज्ञान का अभिमान रहने लगा, या उसे अपनी सिद्धियों का अभिमान रहने लगा। लेकिन ये दोनों ही अभिमान मनुष्य का सर्वनाश करने वाले हैं, उसकी दिव्यता को, उसके तेज को नष्ट करने वाले हैं। तो हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, हम अपने चित्त में कभी भी अभिमान को प्रवेश न करने दें। हम ये न सोचें सभी हमारे चरण स्पर्श करें, लोग हमें दंडवत प्रणाम करें, लोग हमारा बहुत सम्मान करें, हमारी भी देवी देवताओं की तरह पूजा होने लगे, हम पर फूलों की बरसात हो, हम पर दूध की लोटी भी चढ़ाई जाए, हम ये सब न सोचें। हमने देखा, हमने भगवान को इन आंखों से देखा, उसके बारे में जो दो महिमा गाई जाती हैं, वो निराकार है और निरहंकार है, उसको कोई अहंकार नहीं है, जो परम पूज्य है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसकी सभी को पूजा करनी चाहिए, जो सबका परम पिता है, उसमें कोई अभिमान नहीं। वो साकार तन में आया, उसने कहा मेरे को तो तन ही नहीं है, मेरे को तो पैर ही नहीं है, तुम मेरे पैर छुओगे कैसे, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, सच्चा पिता हूँ, पिता की कोई पूजा थोड़ा ही की जाती है, तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम तो योग्य बन जाओ जो मेरा नाम इस संसार में रोशन करो, मेरे ज्ञान को संसार में फैला दो, ताकि सभी के चित्त में बढ़ा हुआ अंधकार प्रकाश में बदल जाए। हमने भगवान को संपूर्ण निरहंकारी रूप में देखा है। हम देखते हैं संसार में मनुष्य को थोड़ा कुछ मिल जाता है तो वह अहंकार के मद में चूर रहने लगता है, वह मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मेरे जैसा डिग्री होल्डर कोई नहीं, मेरा इतना नाम है, मेरी इतनी शान है, मेरे जैसी विद्वता किसी को प्राप्त नहीं हुई, मैंने इस कार्य में सफलता पाई, मैंने वो बड़ा काम किया, मैंने वो बड़ा काम किया, मुझे सारा संसार जानता है। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जितने हम महान बने, उतने ही नम्र बने। ये नम्रता हमारा सच्चा श्रृंगार है, ये नम्रता हमारी शोभा है। तो आओ प्यारे भाई और बहनों, हम दैवी संपदा से युक्त बने, अपने जीवन में देवत्व को फिर से प्रकट होने दें। इस अहंकार के दबाव में हमारे अंदर का देवत्व दबकर छुपकर नष्ट हो जाता है। हम उसे बाहर आने दें, हम उसे ओपन होने दें, हम खोल दें उसे, देवत्व हमारे अंदर है। भारतवासी भाई और बहनों, हम सभी देवताओं के वंशज हैं, हम देवताओं की संतान हैं, हमारे अंदर पवित्रता का शक्तिशाली बीज पड़ा हुआ है। हम उस बीज को पहचान लें और परमात्मा जो हमें आसुरी संपदा से मुक्त करके दैवी संपदा से युक्त बनाना चाहता है, अब उसकी आज्ञा का पालन करके अपने अंदर दैवी गुणों का समावेश करें। हम आपको बता दें, इस समय पुनः भगवान सत्य ज्ञान देकर हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। अनेक लोग मानव से देवत्व के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, भले ही लोगों को उनमें कुछ परिवर्तन कम दिखाई दे, लेकिन हर एक ने अपने जीवन को बहुत कुछ बदल दिया है। हम योग अभ्यास से अपने कटु से कटु संस्कार को भी सॉफ्ट कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि का डिविनाइजेशन कर सकते हैं, बुद्धि को चमत्कारिक बना सकते हैं, हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है आत्म कल्याण का। अब हम थोड़ा अंतर्मुखी होकर अपने बारे में विचार करें कि हमें महान बनना है, आदर्श प्रस्तुत करना है, समाज को नई राह दिखानी है अपने प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष जीवन से। हमारे अंदर दैवी गुण देखकर दूसरे लोग भी दैवी गुण धारण करने के लिए प्रेरित होंगे और इस संसार में दैवी संपदा का आविर्भाव।
जो आत्मा धैर्यता एवं संयम से हर कार्य करती है, जो क्रोधी व्यक्ति को क्षमा करती है, उस आत्मा के प्रति भी रहम रखती है जो उसे कष्ट देती है, जो अपने चित्त में किसी के भी लिए शत्रु की भावना नहीं रखती है, वही आत्मा सही मायने में दैवी संप्रदाय में जाने के योग्य है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर इस निशुल्क ज्ञान का फायदा ले सकते हैं, अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता तो आप जानते ही हैं, तो हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।
पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे।